آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ نئی دلی میں منعقدہ دوسری بھارت عرب وزرائے خارجہ میٹنگ میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی امن اور استحکام میں عرب لیگ کے رول کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اپنے افتتاحی کلمات میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کل مرکزی بجٹ 2026-27 پیش کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کی ترنمول کانگریس حکومت پر معاشرے کو تقسیم کرنے اور ریاست کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ این سی پی کی رہنما سنیترا پوار مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیر اعلی بن گئی ہیں۔ کھیلوں میں بھارت کی دیویکا سہاگ بینکاک میں تھائی لینڈ ماسٹرز بیڈمنٹن کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں، اور ایلینا ریبیکینا نے آریانا سبالنکا کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کا اپنا پہلا خطاب جیتا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دوسری بھارت عرب وزرائے خارجہ کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ سبھی 22 عرب ممالک کے لیڈران اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں، جس کی بھارت پہلی مرتبہ میزبانی کر رہا ہے اور یہ 10 سال کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے وفد، عرب مملکتوں کی لیگ کے سیکرٹری جنرل اور عرب وفود کے سربراہان کا استقبال کیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے علاقائی امن و استحکام کے سلسلے میں عرب لیگ کی مدد کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے غزہ امن منصوبے سمیت فلسطین کے عوام کے لیے بھارت کی جاری حمایت کا اعادہ کیا اور جاری امن کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت اور عرب ممالک کے درمیان عوام سے عوام کے گہرے اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اپنے افتتاحی کلمات میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسا مشترکہ اصول ہونا چاہیے جس پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی دہشت گردی بھارت اور عرب ممالک کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کی عرب مملکتوں کی لیگ ایل اے ایس ممالک کے ساتھ مضبوط شراکت داری ہے اور اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے اہم وقت پر ملاقات کر رہے ہیں جب مختلف وجوہات کے سبب عالمی نظام یکسر تبدیلی سے گزر رہا ہے اور سیاست، اقتصادیات، ٹیکنالوجی اور ڈیموگرافی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج دلی میں سوڈان کے وزیر خارجہ محی الدین سلیم احمد ابراہیم کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات کی اور بھارت سوڈان تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی، کانکنی، پائیدار ترقی اور ثقافتی تبادلے میں اشتراک کے نئے امکانات پر بات چیت کی، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کل لوک سبھا میں مرکزی بجٹ 2026-27 پیش کریں گی۔ لوک سبھا میں بجٹ پیش کرنے کے بعد اس کی کاپی راجیہ سبھا میں بھی پیش کی جائے گی۔ نریندر مودی سرکار کی تیسری مدت کار کا یہ تیسرا بجٹ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 2019 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ریکارڈ مسلسل 9ویں مرتبہ مرکزی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہیں۔ اپنی بجٹ تقریر میں وہ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے منصوبوں کی وضاحت کریں گی۔ توقع ہے کہ بجٹ میں آنے والے سال کے لیے حکومت کا اقتصادی خاکہ پیش کیا جائے گا، جس میں معاشی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مالی استحکام پر خاص توجہ دی جائے گی۔ بجٹ کی تیاری کے دوران مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے شہریوں، بالخصوص نوجوانوں سے ان کی رائے اور تجاویز حاصل کی گئی ہیں، جو آئندہ مرکزی بجٹ 2026-27 میں نظر آئیں گی۔ بجٹ دستاویز پارلیمنٹ میں بجٹ تقریر مقبل ہونے کے بعد یونین بجٹ موبائل ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ وزیر خزانہ مرکزی بجٹ پیش کرنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کالجوں کے 30 طلبہ سے بات چیت کریں گی۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 28 جنوری کو شروع ہوا تھا اور یہ 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
केंद्रीय बजट 2026-27। आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट पर होगा विस्तृत विश्लेषण दिन भर।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर जनमानस की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक
1 फरवरी रविवार सवेरे 10:10 से रात 10 बजे तक
आकाशवाणी FM गोल्ड
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि 77वें यौम जमहूरिया की अजीमुशान परेड से भारत की कसरत में वहदत की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में भारत पर्व 2026 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि भारत पर्व मुल्क भर की रिवायात, खान पान और फनकाराना इजहार को यकजा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तकवीयत देता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात के कच्छ जिले में चारी ढंड को भारत के दलदली इलाकों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये दोनों दलदली इलाके बैरूनी मुल्कों से आने वाले और मकामी परिंदों की सैकड़ों की तादाद के मस्कन हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन दलदली इलाकों को शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इन अजला के मकामी लोगों और उन अफराद को मुबारकबाद दी जो इस तरह की दलदली जमीन को महफूज रखने में दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल संत गुरु रविदास के 649वें यौमे पैदाइश के मौके पर पंजाब का दौरा करेंगे। जनाब मोदी आदमपुर हवाई अड्डे जाएंगे, जहां वो इस हवाई अड्डे के नए नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर की नकाब कुशाई करेंगे। जनाब मोदी लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग का भी इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर मुआशरे को तकसीम करने और रियासत को कमजोर करने का इल्जाम लगाते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बागडोगरा में एक बीजेपी रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी की क्यादत वाली हुकूमत ने बिरादरियों को एक दूसरे के खिलाफ वरगला कर बंगाली मुआशरे के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है।
पूरे प्रदेश में अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेक आनंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है।
इससे कबल शिवाली 24 परगना में आज बैरकपुर में पार्टी वर्करों की एक कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि रियासत में SIR अमल जारी रहेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत के अदम तआवुन के सबब रियासत के सरहदी इलाकों में खारदार तार लगाने का काम नहीं किया जा सका है। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए वजीर आजम के अहम प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संगे मील तय किया है। 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इसे शुरू किए जाने के बाद से प्रगति ने बरवक्त बारीक नजर रखकर अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करके और वजीर आजम की तरफ से बराह रास्त जायजे के तहत अवामी शिकायत को दूर करने का अहल बनाकर हुक्मरानी को यकसर तब्दील किया है। ये प्लेटफॉर्म इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत की नजीर पेश करता है और एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस पर मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को यकजा करता है। पिछली एक दहाई में प्रगति ने तेज फैसले करने और मसाइल को हल करने में मदद दी है जो अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर का सबब बनते हैं और जवाबदेही के एक मजबूत कल्चर को फरोग दिया है। आज इस खसूसी सीरीज में हम उत्तराखंड से मुतालिक प्रोजेक्टों पर एक नजर डालते हैं।
मुश्किल जुग्राफियाई हालात और माहौलियात के लिहाज से हसास होने के बावजूद उत्तराखंड प्रगति निगरानी निजाम के तहत एक अहम तवज्जो का मरकज बनकर उभरा है। इस वक्त रियासत में 42 प्रोजेक्टों की निगरानी की जा रही है, जिनमें से 15 बड़े और आला कदर के हामिल प्रोजेक्टों का जायजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रगति तरीकाकार के तहत लिया जा रहा है। इन प्रोजेक्टों में चार धाम सड़क राबता, ऋषिकेश करण प्रयाग रेलवे लाइन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, पैसेंजर और पन बिजली के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से वाबस्ता कुल 69 मसाइल सामने आए थे, जिनमें से 67 मसाइल पहले ही हल कर लिए जा चुके हैं। मसाइल के बर्वक्त हल होने से प्रोजेक्टों में काफी पेशरफ हुई है, जो कौमी सलामती, कुदरती आपात से निपटने की सलाहियत और यात्रियों के इंतजाम के नुक्ते नजर से इंतहाई अहम है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
राज्यसभा MP सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। ये हलफ बर्दारी उनके शौहर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की इस हफ्ते तैयारा हादसे में अचानक मौत के बाद हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वजीर आला बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि सुनेत्रा पवार रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर मेहनत करेंगी और अजीत पवार के विजन को पूरा करेंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और भारत के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस भूषण आर गवई ने आज नवी मुंबई के तलुजा में मुल्क के पहले भारत रत्न डॉ भीम साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का इफ्तिताह किया। ये सेंटर महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के जरिए कायम किया गया है। इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि ये कानूनी पेशे को मुस्तहकम करने के लिए एक तारीख साज इकदाम है। आज भारत ने अहम कनेक्टिविटी की बहाली में मदद के खातिर जिसे तूफान दितवा में शदीद नुकसान पहुंचा था, श्रीलंका को 10 वैली ब्रिजेस की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर कहा कि ये सप्लाई 45 करोड़ अमरीकी डॉलर के भारत के खसूसी इकतसादी पैकेज का एक हिस्सा है, जिसका ऐलान ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किया गया था। बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स 2026 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने कल शाम बैंकॉक में सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की हुआंग यूसुन को 22-20, 21-13 से हराया। खवातीन सिंगल्स के एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ईशा रानी बरवा मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से 18-21, 21-16, 21-13 से हार गईं। मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के तरुण मणिपल्ली चीन के खिलाड़ी से 11-21, 17-21 से हार गए। टेनिस में मेलबर्न पार्क में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में एलेना रेबेकिना ने आज शानदार खेल का मुशाहरा करते हुए आरियाना सबालेंका को 6-4 से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का अपना पहला खिताब जीता। कजाकिस्तान की पांचवीं सीट की खिलाड़ी की ताकतवर शॉट्स ने दो मरतबा की चैंपियन सबालेंका के लिए शदीद मुश्किल पैदा की और बिलाखिर सबालेंका को हार का सामना करना पड़ा। मर्दों के डबल्स में अमेरिका और बर्तानिया के पांचवें सीड की जोड़ी क्रिस्टीन हैरिसन और नील स्कूप्सकी ने खिताबी मुकाबले में मकामी खिलाड़ियों जैसन कुबलर और मार्क पोलमेंस को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले चौथे सीड के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना कल स्पेन के आलमी नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से होगा। मर्दों के क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने पांचवें T20 मैच में न्यूजीलैंड की जीत के लिए 272 रन का निशाना रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। भारत के लिए ईशान किशन ने शानदार 103 रन स्कोर किए, सूर्य कुमार यादव ने 63 जबकि हार्दिक पांड्या ने 42 रन बनाए। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 6 ओवर्स में 1 विकेट पर 79 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। नई दिल्ली में मुनक्किदा दूसरी भारत अरब वज़राए खारजा मीटिंग में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अरब लीग के रोल की सताइश की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अपने इफ्तिताही कलिमात में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर जोर दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कल मरकजी बजट 2026-27 पेश करेंगी। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مغربی بنگال کی ترنمول کانگریس حکومت پر معاشرے کو تقسیم کرنے اور ریاست کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ این سی پی کی رہنما سنیترا پوار مہاراشٹر کی پہلی خاتون نائب وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور ایلینا ریبیکینا نے آریانا سوالنکا کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کا اپنا پہلا خطاب جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔